नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश से बाहर रहकर आय प्राप्त करने वाले NRI को टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर वे विदेश में रहकर भी भारत से आय कमाते हैं तो टैक्स के अधीन आ सकते हैं। यह भारत के सोर्स पर TDS भी कट सकता है। हालांकि TDS की कटौती तभी होगी जब भारत में अनिवासी NRI के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद भारत से आय अर्जित करना जारी रखते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय टैक्स कानूनों के अनुसार NRI के रूप में लंबे समय तक भारत से बाहर रह रहे हैं तो वे अभी भी घर की संपत्ति, सावधि जमा और शेयरों जैसी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और भारत में सक्रिय बैंक खाते भी रख सकते हैं। ऐसे में अगर NRI टैक्स के अंतर्गत आता है तो इन संपत्तियों पर भारत में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 195 के तहत NRI को भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए TDS कटौती अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी NRI को भुगतान किए गए वेतन के अलावा ब्याज या किसी अन्य राशि के माध्यम से कोई भुगतान करता है, अधिनियम की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार है। कर न केवल उन भुगतानों से काटा जाना चाहिए जो शुद्ध कर योग्य आय हैं, बल्कि उन भुगतानों से भी है जहां भुगतान का केवल एक हिस्सा टैक्स के लिए उत्तरदायी हो सकता है। टाटा नेक्सन की 400,000 यूनिट का प्रोडक्शन पूरा होने के बाद टाटा मोटर्स ने इस उपलब्धि के मौके पर इस कॉम्पैक्ट SUV का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नए वेरिएंट को कंपनी ने टाटा नेक्सन XZ+L नाम दिया है। टाटा ने इसकी शुरुआती कीमत 11.38 लाख रुपए एक्स शोरूम तय की है। टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सन को सितंबर 2017 में लॉन्च किया था, जिसकी इसके 400,000 यूनिट को बनाने में कंपनी को 5 साल का वक्त लगा है। इस SUV की कीमत को जानने के बाद आप जान लीजिए इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की हर छोटी बड़ी डिटेल। टाटा नेक्सन भारत में मौजूद कॉम्पैक्ट SUV रेंज में सबसे ज्यादा सुरक्षित SUV में से एक है। इस SUV को ग्लोबल NCAP द्वारा आयोजित क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें फ्रंट सीट पर ड्यूअल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम EBD, रियर कार पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ISO फिक्स्ड चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स को भी दिया है। फीचर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉइस कमांड, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, ऑटो AC, रियर AC वेंट, क्रूज कंट्रोल, रेन रेसिंग वाइपर्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो डीमिंग IVRM, एयर प्यूरिफायर और 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की वृद्धि करते हुए कहा है कि ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये लगातार तीसरी बार है जब दरों में वृद्धि की गई है। प्रमुख नीतिगत दर में हालिया वृद्धि से अब ये 3 से 3.25% के बीच हो गई है और ये 2008 की शुरुआत के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। गैस के दाम में नरमी से मुद्रास्फीति में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अगस्त में ये 8.3% बनी रही। केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने बुधवार को संकेत दिया था कि अभी दरों में और वृद्धि की जाएगी और साल के अंत तक प्रमुख नीतिगत ब्याज दर 4.4% के स्तर को छू सकती है। अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 4.6% तक ले जाया जा सकता है, जो साल 2000 के बाद से सबसे अधिक होगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जयराम पावेल ने कहा, इस कदम की वजह से मंदी आ सकती है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आती भी है तो वह कितनी गंभीर होगी। उन्होंने कहा, हमें मुद्रास्फीति को पछाड़ना होगा। काश ऐसा करने का कोई पीड़ा रहित तरीका होता। अफसोस है कि ऐसा नहीं है। उच्च स्तर पर बनी हुई मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की है उससे वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका की केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोर रुख रहा, जिसके चलते बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 484 अंक टूट गया। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 483.71 अंक टूटकर 58,973.07 अंक पर आ गया। वहीं NSE निफ्टी 137.95 अंक गिरकर 17,580.40 अंक पर था। सेंसेक्स में बजाज फिनसर्फ, HDFC, विप्रो, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड और ICICI बैंक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। वहीं ITC, मारुति, इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार भी बुधवार को नुकसान के साथ बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र में बीएससी का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 262.96 अंक या 0.44% टूटकर 59,456.78 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 97.90 अंक यानी 0.55% के गिरावट के साथ 17,718.35 अंक पर बंद हुआ था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.50% की बढ़त के साथ $90.27 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बुधवार को शुद्ध रूप से 461.04 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।